कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? रूपाली जी की कठोर आवाज वहां गूंजी, जिससे अहाना घबरा गई। अक्षय भी पहले चौंक गया, फिर उसने पलटकर उन्हें देखा और सहजता से जवाब दिया, वो माँ, मैंने अहाना को कहा था कि आज बाहर डिनर पर चलेंगे। जब से यहाँ आई है, घर की चार दीवारी में कैद है, इसी बहाने थोड़ा बाहर निकलेगी। वाह बेटा, जिस माँ ने जन्म दिया उसकी कोई चिंता नहीं, वो अपनी सारी जिंदगी इस चार दीवारी में कैद रही, अपनी पूरी जिंदगी तुम सबको पालने पोसने और काबिल बनाने में खर्च कर दी, अपनी खुशियों और आराम की कुर्बानी देकर तुम्हें इस काबिल बनाया। आज भी दिन रात सबके लिए अकेली खटती रहती है, उसे कहीं बाहर ले जाने का ख्याल नहीं आया, और बीवी को आए चार दिन हुए नहीं और उसकी चिंता सताने लगी। सही जा रहे हो बेटा, अभी से माँ बाप और परिवार को छोड़कर अपनी बीवी के पल्लू से बंधते जा रहे हो। जाओ जाओ, ले जाओ अपनी बीवी को बाहर, हमारा क्या है, हाथ पैर अब तक सलामत है, बनाकर खुद भी खा लेंगे और अपने परिवार को भी खिला लेंगे। तम जाओ अपनी बीवी के साथ बाहर खाना खाओ, माँ तो है ही घर में काम करने के लिए। रूपाली जी ने आज अक्षय को आड़े हाथों लिया था, उन्होंने इतनी भारी भारी बातें कही थीं कि अक्षय उनके आगे शर्मिंदा हो गया था। उन्होंने भारी क्षोभ व दुख का प्रदर्शन किया, जैसे अक्षय की बात ने उनकी भावनाओं और दिल को गहरी चोट पहुंचाई हो, और आंखों से आंसू भी छलक आए, जिसे देखकर अक्षय बेचैन हो गया। मम्मी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा बेचारे ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ कहना चाहा, पर रूपाली जी उसकी बात काटते हुए घड़ियाली आंसू बहाने लगी। हम सही समझ रहे हैं बेटा, अब तो हमारे अक्ल पर पड़े पत्थर हटे हैं, अब सब साफ साफ नजर आ रहा है हमें। हमने सुना था लोगों को कहते हुए कि शादी के बाद बेटा पराया हो जाता है, और तब हम गर्व से सीना चौड़ा करके पूरे विश्वास से कहते थे कि हमारा बेटा ऐसा नहीं है, वो कभी अपनी पत्नी को अपनी माँ से ऊंचा ओहदा नहीं देगा। आज आपने न सिर्फ हमारा वो अभिमान खत्म कर दिया, साथ ही हमारे विश्वास को भी तोड़ दिया। हम समझ गए कि आपके लिए अपनी बीवी अपनी माँ और परिवार से बढ़कर है। जाइए बेटा, लेकर जाइए अपनी बीवी को, हम तो मियाँ बीवी के बीच नहीं आएंगे, उन्होंने बेहद दुखी स्वर में कहा। अक्षय उनकी बातें सुनकर विचलित हो गया, पर रूपाली जी उसकी बात सुनना ही नहीं चाहती थी। अहाना ने अक्षय को यूं परेशान देखा तो तुरंत ही अपनी खामोशी तोड़ते हुए उसने बोलना शुरू किया, आप दुखी मत होइए मम्मी जी, हम कहीं नहीं जाएंगे, जाएंगे तो पूरा परिवार एक साथ ही जाएगा, और आप इनसे नाराज भी मत होइए, इनका मकसद आपका दिल दुखाना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। वो सफाई देती रही, पर रूपाली जी वहां से चली गई, उनके पीछे अक्षय भी गया अपनी रूठी माँ को मनाने, और अहाना बेबस और लाचार सी वहां खड़ी रह गई। रूपाली जी बात का पतंगा बनाकर सारा माहौल खराब कर गई थी, शातिर खिलाड़ी थी वो, ऐसी बाजी चली उन्होंने कि एक दांव में अहाना को शय और मात दोनों मिल गईं। उनका प्यारा बेटा अक्षय उन्हें मनाने में लगा था, अपनी बीवी को छोड़कर उनके पास आया था, और अपनी जीत पर रूपाली जी का मन गुमान से भर गया था। हमारे बेटे संग अकेले बाहर खाना खाने जाएगी, उसे हमसे दूर करके उसकी जिंदगी में हमसे ऊंचा ओहदा लेगी, हम कभी ऐसा होने ही नहीं देंगे, हमारे रहते तुम कभी हमारे बेटे को हमसे छीनने पर कामयाब नहीं होगी। पहले भी अक्षय के लिए सबसे ज्यादा हम अहमियत रखते थे, और अब भी उनके लिए हमसे ज्यादा जरूरी और कोई नहीं, और ना ही कभी होगा। कुटिलता से मुस्कुराते हुए उन्होंने मन ही मन सब कहा, और अहाना को नीचा दिखाकर गुरूर से भर उठी। सॉरी, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। अक्षय उदास था और दुखी व मायूस भी, बहुत दिल था उसका अहाना के साथ बाहर जाने का, पर इतनी सी बात पर जो बवाल रूपाली जी ने मचाया उसके बाद उसका सारा मूड खराब हो गया। बड़ी मुश्किल से बहुत खुशामद करने के बाद तो वो मानी थी, और आखिर में जो वो करना चाहती थी उसमें कामयाब रही थी। अक्षय और अहाना कहीं बाहर नहीं जा सके थे। अहाना जानती थी कि अक्षय रूपाली जी के व्यवहार की वजह से डिस्टर्ब है, और दुखी भी। उसने सौम्य सी मुस्कान लबों पर सजाई, फिर उसके गाल को अपनी कोमल हथेली से छूते हुए बोली, कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि आपका हमारे साथ बाहर जाने का बहुत मन था पर नहीं जा सके, और मम्मी जी की बातों ने आपको बहुत हर्ट भी किया है, पर आप परेशान या दुखी मत होइए, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। आपके साथ अगर हम एक झोपड़ी में बैठकर नमक रोटी भी खाएंगे तो वो भी हमें किसी 5-स्टार होटल में बैठकर खाई महंगी डिशेज से कहीं ज्यादा खुशी और संतुष्टि देगी। हमारे लिए बस आपका साथ महत्वपूर्ण है, बाकी किसी आडंबर का कोई मोल नहीं, और जब कल आप सबको डिनर पर लेकर जाएंगे तो मम्मी जी की नाराजगी भी दूर हो जाएगी और वो सब भूल जाएंगी। अहाना बहुत सीधी और सरल स्वभाव की लड़की थी, जिसका दिल साफ था। उसकी बातों ने अक्षय की उदासी और मन पर रखे बोझ को कुछ कम जरूर कर दिया था, पर आज के इंसिडेंट ने उसके जहन में एक गहरी छाप छोड़ी थी। अगले दिन सब डिनर के लिए बाहर गए थे। रूपाली जी की नाराजगी अब दूर हो चुकी थी और वो खुश थी अपनी जीत पर। आखिर उन्होंने अक्षय और अहाना को साथ नहीं जाने दिया था। डिनर के वक्त भी उन्होंने अहाना को ये जताने का एक मौका नहीं छोड़ा था कि अक्षय की जिंदगी में उनकी अहमियत उससे कहीं ज्यादा है, तभी तो उसे नहीं लेकर गया पर उन्हें लेकर आया है। अहाना सब समझकर अनजान बनी रही और अक्षय सारे वक्त मन ही मन कुड़ता रहा। खैर, डिनर खत्म हुआ और सब होटल से बाहर निकल आए। बाकी सब एग्जिट गेट पर खड़े थे और अक्षय पार्किंग से कार निकालने गया था। अहाना सबसे कोने में खड़ी थी। रूपाली जी और अभिजीत जी आपस में खाने को लेकर बातें कर रहे थे और अन्वय उससे बतियाने में लगा था। आहाना, अचानक ही किसी ने आहाना को पुकारा। एक अनजान आवाज में अपना नाम सुनकर आहाना चौंकते हुए आवाज की दिशा में पलटी। इतने में वो शख्स आहाना के सामने आकर खड़ा हो गया। आहाना आंखें बड़ी बड़ी किए असमंजस भरी निगाहों से उसे देख रही थी और उस शख्स को पहचानने की कोशिश कर रही थी, पर शायद पहचान नहीं पा रही थी, जबकि वो लड़का चेहरे पर रोष, गुस्सा और नफरत के भाव लिए आहाना को घूरने लगा था। तो तुम सच में आहाना ही हो? मुझे लगा कहीं मेरी आंखों का धोखा तो नहीं, पर जिस लड़की ने मेरी जिंदगी में आकर मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी, मैं उसे पहचानने में कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। तुम आहाना ही हो, आहाना शुक्ला। आहाना उसकी बात सुनकर बुरी तरह से चौंक गई। उसके लगाए इल्जाम उसे समझ ही नहीं आए और उन आंखों में झलकते क्रोध और नफरत की वजह समझने में भी वो असमर्थ थी। वो चेहरा देखा देखा सा तो लग रहा था, पर दिमाग पर बहुत जोर डालने पर भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। रूपाली जी, अभिजीत जी और अन्वय तीनों उस लड़के को अचंभित से देखने लगे थे। उस अनजान इंसान को आहाना से यूं बदतमीजी से बात करते देखकर अन्वय उनके बीच आ गया। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आप कौन हो और ये किस तरह से बात कर रहे हो मेरी भाभी से? तुम्हारी भाभी मेरी होने वाली बीवी थी और उससे कुछ पुराने हिसाब बराबर करने हैं मुझे, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम हमारे बीच में ना आओ, उस लड़के ने अन्वय को चेतावनी दी। उस लड़के की बात सुनकर आहाना के दिमाग में अचानक ही कुछ स्पार्क हुआ और उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। सामने खड़े लड़के को अब वो पहचान गई थी। ये प्रतीक था जिससे उसकी शादी तय हो रही थी, जिसकी उसने बस एक बार तस्वीर ही देखी थी, कभी सामने से मिला ही नहीं, और उस बात को भी काफी वक्त हो गया था, इसीलिए शायद उस पर वक्त की धूल जम गई थी और आहाना उसे पहचान नहीं पाई थी। प्रतीक, आहाना के फड़फड़ाते लबों से धीमी सी आवाज निकली और प्रतीक की रोषपूर्ण नजरें आहाना की ओर घूम गई।